ओम शांति। बाबा ने हम सभी को इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया कि हम गृहस्थ में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए, कमल पुष्प समान निर्लिप्त जीवन जी सकें। आज इसी टॉपिक पर चर्चा है, गृहस्थी में ट्रस्टी, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, कार्यों में रहते हुए निमित्त भाव कैसे धारण करें, ट्रस्टी बन जाएं, ताकि गृहस्थ में आने वाली परिस्थितियां, कार्य व्यवहार में आने वाली समस्याएं और परिवारों में लगा हुआ ममत्व मोह छूट जाए। हम सभी का एक ही मार्ग है और एक ही मंजिल है, संपूर्णता की ऊंची मंजिल पर पहुंचना है और उसके लिए बाबा ने हमें ज्ञान और योग की शिक्षाएं दी हैं। चाहे कोई अपने जीवन को समर्पित करके ईश्वरीय सेवाओं में लग गए, चाहे कोई ग्रस्त व्यवहार में रहकर ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, सबका एक ही लक्ष्य और एक ही मार्ग। किसी ने लौकिक कार्य छोड़कर संपूर्ण अलौकिक कार्यों को अपना जीवन बना लिया और किसी के जीवन में दोनों हैं। तो परिवारों की समस्याएं जो आगे बढ़ने से रोकती हैं आत्मा को, परिवार में अटका हुआ मोह और ममत्व जो एक सूक्ष्म बाधा बना रहता है, रोज की जिम्मेदारियां जो मन पर बोझ जैसा अनुभव कराती हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम अपनी धारणाओं को कैसा बनाएं जो जीवन कमल फूल समान निर्लिप्त हो जाए। आज तक आप सब जानते हैं, गृहस्थ को शब्दों में आश्रम कहा गया, परंतु सारा संसार जानता है कि अब गृहस्थ आश्रम नहीं रहा, बल्कि जो आश्रम थे वो भी आश्रम नहीं रहे, आश्रम का नाम ही लगभग समाप्त हो गया। ऐसे में आकर बाबा ने गृहस्थ आश्रम की पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की फिर से नींव डाली। तो हम सबका ये भी एक लक्ष्य है कि घर घर आश्रम बन जाए, घर घर मंदिर बन जाए और हम सब हों उस मंदिर की चेतन मूर्तियां, पूजनीय मूर्तियां, इष्ट देवी देवता। कोई अगर हमें देखे तो उसे गृहस्थी माताएं नजर ना आए, क्या नजर ना आए, क्या नजर आए, देवियां। चेहरों से, नैनों से, भावनाओं से, बोल से, माताएं नहीं, गृहस्थी नहीं, बोझ से दबे हुए नहीं, लेकिन देवियां नजर आए, चेतन बन जाएं, पूज्य बन जाएं, मंदिरों में जाना छोड़ दें लोग, प्रसिद्ध हो जाए कि अगर शांति चाहिए, अगर मनोकामनाएं पूर्ण करनी है तो यहीं पर देवी देवताएं हैं, उनके पास चले जाओ। और ऐसी स्थिति देखकर जो हम सबको प्राप्त होनी है, एक दिन आएगा, आ भी गया है, जब सन्यासियों के भी मस्तक झुक जाएंगे कि जो काम हम गृहस्थ को छोड़कर, घरबार को छोड़कर जंगल में जाकर न कर सके, वही काम ये सभी लोग गृहस्थ में रहकर कर रहे हैं। परंतु इस सब के लिए, सन्यास को भी चैलेंज करने के लिए और एक ऐसा आदर्श बनाने के लिए जिसको जन्म जन्मांतर सारा संसार फॉलो करता रहे, हमें क्या धारणाएं बनानी पड़ेंगी। एक बाबा की बात आपको याद दिलाएं बहुत पहले कभी बाबा ने कहा, बड़े काम की बात है, बड़ी गुह्य फिलोसोफी है। बाबा ने कहा कि बाप जो मालिक है वो स्वयं को निमित्त समझकर सदा निश्चिंत रहते हैं। देखते हैं ना, हम बाबा कहते हैं कि सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है। कभी कभी तो शिव बाबा कह देते हैं, मैं भी कुछ कर नहीं रहा, मेरा कुछ एहसान नहीं तुम पर, यद्यपि सब एहसान है, सब कुछ हो रहा है। अपने को पूरा निमित्त भाव से दिखा देते हैं। और बच्चे जो निमित्त हैं वो अपने को मालिक समझकर चिंताओं में डूबे रहते हैं। जो मालिक है वो निश्चिंत है और जो निमित्त है वो चिंतित है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है हमारे जीवन का कि हम अपने जीवन को चिंताओं से और बोझ से मुक्त करके चले। ये कला है, ये हमारे इस जीवन की, हमारी फिलोसोफी की सफलता है कि हम बोझ से मुक्त होकर निश्चिंत जीवन जीना सीखें। यह हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी है। तो निमित्त भाव जो हमें हल्का कर देता है, बोझ से मुक्त कर देता है, हम उसको कैसे अपनाएं? भक्ति में हम सब गाते थे कि हे भगवान तन मन धन सब कुछ तेरा, वहां केवल गाते थे और वायदा करते थे जब तुम आओगे तो सब कुछ तेरा कर देंगे। अब बाबा आकर याद दिलाते हैं कि मेरा मुझे दे दो। और हमें अपने को देखना होता है कि हम देते हैं या नहीं, या केवल कहते थे, हमें ये पता नहीं था कि भगवान आएगा तो देना पड़ेगा। हमने यही सोच लिया था कि गाने तक ही काम पूरा हो जाएगा। तो अब हम सच्चे मन से विवेक युक्त होकर तन मन धन और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन पहले तन मन धन बाबा को अर्पित करें। मन से अर्पित करने का अर्थ दे देना ही नहीं है, अर्पित करने का अर्थ है कि हमारे तन में, मन में और धन में मेरेपन की भावना समाप्त कर दें, समर्पित भाव अपना लें। समर्पणता का बड़ा गुह्य रहस्य, बड़ी डीप डेफिनेशन यही है कि मन के भाव तेरेपन के हो जाएं, मेरेपन के न रहें। और बाबा के महावाक्य हमें याद करने होंगे। बाबा ने कहा है कि जो बच्चे ऐसा समझकर अपने जीवन में चलते हैं कि सब कुछ तेरा, वो मानो बाबा के भंडारे से ही खाते हैं। आपको याद होंगी ये साकार की मुरलियां, वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उनका भंडारा मानो शिव का ही भंडारा है। और ऐसे समझने वालों का भंडारा सदा ही भरपूर। कितनी बड़ी बात है कि हम अगर मन में ऐसा अर्पण भाव पैदा कर लें तो हमें इस जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। कष्ट तब हो रहा है जब हमने मेरापन लगाया हुआ है, अटक गए हैं हम, है सब कुछ तेरा, है सब कुछ ईश्वरीय देन, और हमने उसको अपनी कमाई समझ ली है कि हमने 20 साल 30 साल पूरा जीवन मेहनत करके ये कुछ एस्टेब्लिश किया है, इन पर मेरा अधिकार है, ये मेरा है। अब ये मन कह ही नहीं रहा कि ये तेरा है क्योंकि हमने कमाया है। तो इस रहस्य को समझते हुए कि हम हमेशा ही ब्रह्मा भोजन खाएं और ये महसूस करें कि हमारी पालना भोलेनाथ के भंडारे से हो रही है, हम स्वयं अपनी और अपने परिवार की पालना नहीं कर रहे, बाबा कर रहा है, ये बहुत दिल की गहराई की भावना पैदा कर लेना, इससे निमित्त भाव बढ़ जाएगा। और आपको याद होगा 2 साल पहले ही बाबा ने मुरली में कहा कि तुम ज्यादा सोच नहीं करो, चिंता नहीं करो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पीछे जो भी है उन सब की जिम्मेदारी बाप की है। इसलिए अगर तुम बाप से सच्चे रहोगे तो कहीं कोई कमी नहीं पड़ेगी, जब आवश्यकता होगी तब प्राप्त हो जाएगा। बाबा के इस महावाक्य में, भगवान के महावाक्य है, हमें किसी भी तरह के संशय की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो हम यहीं से शुरू करें कि सब कुछ तेरा है, इसलिए मन भी तेरा। इधर से ही शुरू करें कि सच्चे दिल से सब कुछ तेरा कर दें। अब तन मन धन के अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो कलयुग के अंत में जीवन में संघर्ष बहुत है, परिस्थितियां बहुत हैं। बाबा ने कलयुग की तुलना की है सागर से जिसमें निरंतर लहरें उठती हैं, निरंतर लहरें, ऊपर शांति नहीं है, लहरें ही लहरें हैं। तो इस कलयुग में परिस्थितियों की लहरें उठ रही हैं, हमें ये बात स्वीकार कर लेनी होगी। जिस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं उसमें हमें कष्ट अनुभव नहीं होता, और जिस चीज के लिए हम ये सोचते हैं ये क्यों हो रहा है तो क्यों आते ही कष्ट प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए ये परिस्थितियों का युग है, समाप्ति की ओर सब कुछ बढ़ रहा है, इसलिए हमारे हिसाब किताब भी समाप्ति की ओर हैं। ये समझते हुए हमें अपनी परिस्थितियां और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ सब कुछ बाबा को दे देना होगा। जैसे लौकिक में जो ट्रस्टी होते हैं वो कार्य पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, ईमानदारी से, लेकिन होते ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। ऐसे ही हम सब ने अपना सब कुछ बाबा को दिया और बाबा ने हमें रिटर्न कर दिया, वापिस कर दिया कि इसे तुम संभालो, इस तरह से प्रयोग करो, सारी श्रीमत दे दी कि अब ये तुम्हारा तन मेरा है, तुम्हारा मन भी मेरा है, तुम्हारा धन भी मेरा है, अब तुम इन्हें उसी तरह यूज कर सकते हो जैसे मेरी आज्ञा हो। उसके बिना अगर तुम इसे यूज करोगे तो तुम ऑनेस्ट नहीं कहलाओगे। तो यहां से हमारा पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। तो सब कुछ देने के बाद इसका अर्थ ये नहीं कि हम अलबेले हो जाएं, लेकिन सब कुछ देने के बाद हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई, हमारी बुद्धि हद से निकलकर बेहद में अब चली गई, मेरापन निकल के बाबा में सब कुछ समाने लगा। तो एक एक कदम पर हमें श्रीमत प्राप्त है। तन को कैसे प्रयोग करें, कितनी सूक्ष्म श्रीमत बाबा ने दी, तन की संभाल भी करो लेकिन तन से प्यार भी निकाल दो। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर तन की संभाल करनी है तो तन से प्यार रखना पड़ेगा, और बाबा ने कहा प्यार भी नहीं हो घृणा भी नहीं हो। इस शरीर से घृणा भी ना हो जाए कि तो बेकार है, इसकी हमें कोई संभाल नहीं करनी, इसकी संभाल भी करें लेकिन इसमें अटक भी ना जाएं। कितनी सूक्ष्म बात हो गई, गृहस्थ में भी रहें, अपनी जिम्मेदारियों को भी संभालें। और जहां मनुष्य जिम्मेदारियों को संभालता है, जहां मनुष्य का हर क्षण लगता है, वहां उसका ममत्व होना बड़ा नेचुरल है, लेकिन बाबा ने कह दिया मोह ममत्व भी न हो। तो कितनी सूक्ष्म बातें हम सबके सामने रख दी, एक बात को हम लें दूसरी छूट न जाए। कर्म हम कर रहे हैं बड़ी नेचुरल गति है, कर्म मनुष्य को बांधता है, कर्म मनुष्य को आसक्त करता है, कर्म में मनुष्य का इंटरेस्ट पैदा होने लगता है, और अगर हम कर्म बिना इंटरेस्ट के करेंगे तो कर्म सूखा हो जाएगा, हमें कर्म में आनंद नहीं आएगा। लेकिन कर्म में आनंद भी लेना है और कर्म से अनासक्त भी होना है। तो इतनी गहरी फिलॉसफी जो हमारे सामने है, जिसको हमें अपने जीवन में साकार रूप देना है, उसके लिए जैसे सब कुछ हम बाबा का कर देते हैं, वैसे ही दूसरी बात जो एक सरल शब्द में हमें याद रखनी होगी अपने जीवन में, कि मेरापन कहीं भी न रहे। जब मेरापन ग्रस्त में बना रहता है तो वही बंधन बन जाता है ग्रस्त। कर्मों में अगर मेरापन है तो कर्म बंधन बन जाते हैं, लौकिक कार्यों में अगर मेरापन है तो वो भी बंधन बन जाते हैं। बहुतों की ये एक प्रैक्टिकल शिकायत है कि हम ग्रस्त में बहुत व्यस्त हैं, टाइम नहीं मिलता। बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ग्रस्त की पालना करने के लिए बहुत समय तो देना ही पड़ता है, परंतु हमें जरा इस एक बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी, अगर हमने मेरेपन का त्याग किया होगा, अगर हमने निमित्त भाव अपनाया होगा, तो हमें अपने ग्रस्त को पालन करने के लिए बहुत समय नहीं देना पड़ेगा। सहज प्राप्ति होगी, समय बच जाएगा। परंतु इसके साथ इस बात की भी बहुत आवश्यकता है, विशेष अंडरलाइन करके सुने आप, कि हमें अपने पड़ोसियों की रीस नहीं करनी है, कंपटीशन नहीं करना है। हमारे पड़ोसियों के पास बहुत सुंदर मकान है, हमारे पास भी होना चाहिए। क्या पड़ोसियों ने कभी सोचा है कि हमारे पड़ोसी के पास तो भगवान आया हुआ है, हमारे पास भी आना चाहिए? तो हम उनकी ओर क्यों झुकते हैं? झुकना चाहिए उन्हें हमारी ओर। पड़ोसी के घर में तो रंगीन टीवी है, हमारे घर में ब्लैक व्हाइट ही है। क्या लोग कहेंगे कि तुम सब ऐसे सन्यासी बन गए कि अपने बच्चों के लिए रंगीन टीवी भी नहीं ला सकते? ये भावनाएं जो मनुष्य को सांसारिक बहाव में बहाती हैं, जिसमें गृहस्थी लोग ये सोचने लगते हैं कि ठीक है, बाबा तो आया है, परंतु हमें समाज को भी तो देखना है। परंतु क्या समाज कभी ऐसा सोचता है कि हमें इनको भी देखना है? तो हम महान हैं, हम पूर्वज हैं, हम जग के आधार मूर्त हैं, हमें फॉलो करेगा सारा संसार, हमें किसी को फॉलो करने की आवश्यकता न हो। ये रीस की भावना, ये सांसारिक इच्छाएं अगर ये जीवन में हैं, तो ग्रस्त में अलौकिकता कभी नहीं आ सकेगी। फिर तो ग्रस्त लौकिकता से भरपूर होगा, आने वाले उसे मंदिर अनुभव नहीं कर पाएंगे। और हमारा लक्ष्य बहुत महान है, हम देख नहीं रहे। अमेरिका में आप जाएं, हर घर वैभवों से भरा हुआ है, धन की कोई कमी नहीं। बाह्य रूप से आपको दिखाई देगा ये स्वर्ग है, लेकिन अगर उनसे पूछो क्या जीवन का सुख भी है, तो शायद 1 लाख में से कोई एक व्यक्ति मिले जो कहे कि हमें जीवन में बहुत संतुष्टि है। तो हम सब जानते हैं कि संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि, पदार्थों में नहीं मिलती। आज रंगीन टीवी आ गया, फ्रिज आ गई, घर में एसी लग गया, बहुत सुख से हम रह रहे हैं, लेकिन मन की इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होंगी। और कुछ इच्छाएं होती रहेंगी, और मनुष्य इच्छाओं का गुलाम हुआ सदा ही जीवन में परेशानी का अनुभव करता रहेगा। इसलिए जब बाबा के बन गए, जब भगवान को अपनी आंखों से देख लिया, जिसके लिए फिलोसॉफी कहती है कि आंखों से भगवान नहीं दिखता, और हम सब ने बैठा हुआ नहीं देखा, यहाँ कितनी बार देख लिया अपनी आंखों से उसको, तो उसको सामने देखकर अगर कोई संसार की ओर भागने लगे, भगवान सामने हो और उसको तो इग्नोर कर दे और संसार के वैभवों की ओर अट्रैक्ट हो जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा, क्या कहेंगे इसे? भगवान का भी अनादर है ना, कि जिसके लिए आज तक हम कामना करते थे कि बस तुम आ जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें एक बार ये आंखें देख लें, फिर संसार को देखने की कोई इच्छा नहीं रहेगी। तुम्हें एक बार सुन लें, फिर इस संसार से कुछ हमें नहीं लेना देना। और उसको सामने देखकर हम अपने किए हुए वायदों को भूल जाएं, संसार की ओर हमारा मन दौड़ने लगे कि नहीं, संसार में भी कुछ है, हमें तो बैलेंस रखना है, गृहस्थ को भी तो देखना है, तो ये एक बहुत सूक्ष्म कमजोरी होगी और बाबा की नजर से अपने को दूर करना हो जाएगा। इसलिए अब समय आया है जब भगवान की नजरों में बसने का समय है। ये सांसारिक प्राप्तियां तो सतयुग से हमारे पास इतनी होंगी कि जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, भरपूर होगा सब कुछ। केवल ये समय है अलौकिक सुख का, ईश्वरीय सुख का, अपने गृहस्थ में रहते हुए। ये स्वयं के ऊपर है कि आप सांसारिक विचारों की ओर बह जाएं या बाबा में मगन हो जाएं। घर घर को जब मंदिर बनाना है, जब गृहस्थ में हम ट्रस्टी बन गए, जब हमने ये समझ लिया कि ये सब कुछ बाबा का है, तो उस घर में बाबा के ही वाइब्रेशन होने चाहिए। आप में से शायद बहुतों के ये प्रश्न होंगे कि हम दो ही चलते हैं, बच्चे नहीं ज्ञान में चलते, या हम एक चलते हैं, दूसरे सहयोग कम देते हैं। चलते दोनों ज्ञान में हैं, लेकिन एक का सहयोग कम है, ऐसे में क्या किया जाए? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल समस्या हो जाती है कि घर में ट्रस्टी तो हैं, लेकिन बच्चे कुछ और मांग कर रहे हैं। क्या है इसमें सूक्ष्मता? क्यों ऐसा हो रहा है कि जिस घर मंदिर में दो चेतन मूर्तियां हों, विचार करें, जहां दो योगी रहते हों, जहां दो पवित्र आत्माएं रहती हों, वहां चार छह बच्चे उनके प्रभाव में अलौकिक न बने, ऐसा क्यों होता है? विचार करें आप, दो महान आत्माएं, एक महान आत्मा एक शहर में रहती हो, सारा शहर उसकी ओर खींचा चला आता है, और एक घर में दो पवित्र आत्माएं रहती हों और बच्चे भी न खींचे आते हों, किसका दोष है? अपने वाइब्रेशंस कमजोर हैं, बच्चों के प्रति कुछ और भावनाएं भी हैं। हमने देखा है कई माताएं, बाबा की तो हैं, माताएं ख्याल ना करें, लेकिन वो सोचती हमारे बच्चे तो शादी कर ही लें, हम बूढ़े हो जाएंगे कल, हमारा क्या होगा? ये कई माताओं के मन में ख्याल रहता है, भले शादी करके फिर पवित्र हैं तो ठीक रहेगा, लेकिन बेचारे अकेले अपना जीवन कैसे जिएंगे? ऐसी भावनाएं उनके मन में वैसी उल्टी भावनाओं को जन्म देती है। ये सूक्ष्म मोह भी होता है और सूक्ष्म कामनाएं भी इसके पीछे काम करती हैं। तो गृहस्थ में अगर इस तरह की फीलिंग हो रही है कि बच्चे साथ नहीं दे रहे, या अपना प्रभाव अपने परिवार पर और समाज पर या संबंधियों पर नहीं पड़ रहा, तो उसका कारण अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की कमी ही है। इसलिए अपने को जरा और अंतर्मुखी बनाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस हमारे सारे परिवार को श्रेष्ठता की ओर ले चले। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जब अपने घर को मंदिर बनाना है, तो चेतन मूर्तियों का स्वभाव कैसा होना चाहिए? चेतन जो मूर्तियां हैं, जिनके दर्शन करने के लिए लोग आएंगे, जिसकी यादगार भक्ति में चली आ रही है कि मंदिर का दरवाजा खुले और दर्शन करके हाथ जोड़ के समझे आज का दिन सफल हो गया। ये कहां से रसम शुरू हुई? ये हमसे ही शुरू हुई, और इसका रहस्य यही है कि हमारे दर्शन ऐसे हों, हमारे चेहरे ऐसे हों, जिसको देखकर दूसरों का सारा जीवन सफल हो जाए, दिन नहीं सारा जीवन सफल हो जाए। परंतु ऐसा दर्शन, ऐसा हमारा स्वरूप कब होगा? कैसा स्वभाव चाहिए हमारा? बोलो कैसा स्वभाव चाहिए? घर में रहते हुए स्वभाव बहुत श्रेष्ठ, बहुत मीठा, बड़ा आकर्षक, और दूसरे शब्दों में कि छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा हो जाना, बिगड़ जाना, क्रोध में आ जाना, मूड ऑफ कर लेना, लड़ाई झगड़ा कर देना, बोलना, ये सब हमारे घर के वाइब्रेशंस को कमजोर कर देती है। इसलिए सबसे पहले चेतन देवी देवताओं का ये कर्तव्य है, अगर हम बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने स्वभाव से प्रत्यक्ष करें। बाबा जैसा स्वभाव, न केवल मीठा, लेकिन ऐसी स्थिति जिसको कोई परिस्थिति चिड़चिड़ेपन में न बदले, जिसको कोई परिस्थिति क्रोध में न बदल दे, गुस्से में न बदल दे। जब ऐसा स्वभाव होगा तब घर का माहौल बहुत प्रफुल्लित होगा, खुशहाल माहौल होगा, और जहां खुशहाल माहौल है, हमें याद रखना चाहिए, जहां माहौल खुशियों से भरा है वहां कोई आपदा आ ही नहीं सकती। चाहे संसार में कितनी भी आपदाएं होंगी, चाहे संसार में सब कुछ विपरीत होगा, विनाश होगा, अनेक तरह के वार होंगे हर एक मनुष्य पर इविल चीजों के, लेकिन जहां खुशहाली है घर में, वहां पर सबको आकर चैन ही मिलेगा। और जिस घर में खुशहाली हो उसी घर में बच्चों का और हर व्यक्ति के विवेक का विकास भी होगा, बुद्धि डेवलप होगी। अगर किसी घर में आप माहौल को भारी बना दो तो आप देख सकते हैं, आप दुनिया में देख सकते हैं, बच्चों की बुद्धि पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत विपरीत असर। और ये समस्या आजकल बहुत बढ़ती जा रही है, बाबा के ज्ञान से भी जुड़ी हुई बात है और लौकिक बात भी है, कि जहां बाबा हम सबको ज्ञान योग वैराग्य और त्याग सिखा रहा है, वहां इस बात का भी आपको बैलेंस रखना है कि अपने बच्चों की पालना भी यथार्थ रूप से हो। लौकिक पालना में अलौकिक पालना को तो जोड़ दिया जाए। मैं आपके सामने ये एक बड़ी गहरी साइकोलॉजिकल बात रख रहा हूं, इस पर आप ध्यान दें कि कई बार ज्ञान में आने के बाद माँ बाप अपने बच्चों के प्रति इतने विरक्त हो जाते हैं कि बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। ज्यादा आसक्त कोई होते हैं, कोई ज्यादा विरक्त, और बच्चों के मन में बचपन से ही माँ बाप के प्रति प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से मन भर जाता है। मन में एक ऐसी उदासी छाई रहती है, प्यार न मिलने के कारण कई माँ बाप इस डर से बच्चों को प्यार नहीं देते कि कहीं ये प्यार मोह में न बदल जाए। इसका इतना उल्टा असर पड़ता है बच्चों पर कि जैसे जैसे उनकी आयु बड़ी होगी, उनके मन में उदासी और निराशा के ऐसे बीज पड़े होंगे जो बार बार उगते रहेंगे, बार बार उनका जीवन उदास और निराश होता रहेगा, और माँ बाप के प्रति मन में बनी हुई बदले की भावना उनके व्यवहार को बिगाड़ती रहेगी और बच्चे आगे चल के समस्या बन जाएंगे। जिसके घर में जिन बच्चों ने भी जन्म लिया है, क्यों जन्म लिया है वो हम जानते हैं कि उन आत्माओं का हमसे कुछ संबंध है, हिसाब किताब लेकर वो आए हैं। अगर हम उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते तो आगे चलकर वो हमारे लिए समस्या बनकर वो हिसाब किताब लेंगे। इसलिए निर्मोही बनने का अर्थ, अनासक्त बनने का अर्थ ये भी नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से दूर हो जाएं, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, नहीं तो कहीं कहीं ये बात बाबा की सेवाओं के लिए बड़ी डिसर्विस करने वाली बन जाती है। कि लोग देखते हैं जब से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ इनका ध्यान अपनी जिम्मेदारियों से हट गया है। लेकिन महान व्यक्ति वही है जो जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी स्थिति को महान बना ले, जिम्मेदारियों से लापरवाह होकर कोई भी व्यक्ति सदाकाल के लिए अपनी स्थिति को मजबूत नहीं बना सकता, क्योंकि कर्तव्य के प्रति लापरवाही आगे चलकर पुरुषार्थ की लापरवाही में बदल जाएगी, ऐसा प्राय होते हुए देखा जाता है। इसलिए लापरवाही हमारी कहीं भी न हो, अगर हम लौकिक में अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाएंगे तो हमारे मन में एक आत्मसंतोष रहेगा, एक गौरव रहेगा और उसकी मदद पुरुषार्थ में हमें प्राप्त होती रहेगी। सभी के सामने गृहस्थ में एक विशेष परिस्थिति आती है जब रीति रिवाजों से सामना पड़ता है। कहीं किसी की शादी हो रही है, उसमें खर्च करना है, कहीं किसी रीति रिवाज को निभाने के लिए जाना है। तुम अपने पैसे को इस तरह नष्ट न करो, उधर समाज की रीति रिवाज खींच रही है कि नहीं जाएंगे तो डिसर्विस होगी, नहीं जाएंगे लोग क्या कहेंगे, बुला रहे हैं, जाना भी जरूरी है और बाबा की आज्ञा को भी पूर्ण करना है। इस बैलेंस को कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए? बाबा भी जानते हैं कि समाज के रस्म रिवाज हैं, इनसे भागा नहीं जा सकता, सदा नहीं भाग सकते, क्योंकि भारत में ऐसी कल्चर बनी हुई है कि हर व्यक्ति को अपने संबंधों में लेन देन करना ही पड़ता है। और हमने अपना सब कुछ दे दिया भगवान को, अब जब उसकी संपत्ति से हमें संबंधों में लेन देन करना है तो हमें उसकी श्रीमत की जरूरत पड़ती है। तो उसने श्रीमत दे भी दी है और कहीं आवश्यकता पड़े तो ले लेनी चाहिए। बाकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप इस जगह कहीं पर जाओ तो आप अपनी ऊंची स्मृति को साथ लेकर चलें। ऐसा ना हो कि लौकिक साथियों के साथ रहते हुए अपनी अलौकिकता को भूल जाएं। मान लो आप शादी में गए हैं, आपको वहां कुछ कर्तव्य भी करने पड़ रहे हैं, लेकिन आप ये न भूलें कि हम बहुत महान आत्माएं हैं, ये 100 या 1000 लोग यहाँ हैं, इनमें से मैं एक ही आत्मा सबसे महान हूँ, परम पवित्र हूँ। इस बात को अगर याद रखेंगे तो कहीं भी जाते हुए सेवा ही होगी। लेकिन अगर हम अपनी महानता को भूलकर उसमें संपूर्ण इंटरेस्ट लेते हुए आसक्त भाव रखते हुए लिप्त हो गए तो हमारी स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसा बहुत गृहस्थियों के साथ हुआ कि उन्हें केवल एक शादी करनी पड़ी और स्थिति कम से कम 1 साल के लिए नीचे उतर गई। बहुतों के साथ ये प्रैक्टिकल घटना हो गई है कि लड़की की शादी करनी पड़ी, उसमें इतनी लिप्त हुए, मन इतना उसमें इन्वॉल्व हो गया कि 1 साल लग गया फिर से वहीं पहुंचने में। क्यों ये हुआ, क्यों हुआ? ये आसक्त भाव से कार्य किया। ये हमें पहले से ही प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी कि हम अपनी जिम्मेदारियों को अनासक्त भाव से कैसे करें, बाबा को साथ रखते हुए कैसे करें। सबसे बड़ा टॉपिक है ये, सारी गीता इस पे लिखी हुई है कि एक मार्ग है सन्यास, जिसमें एक व्यक्ति सब कुछ छोड़कर चला गया है। दूसरा मार्ग है कर्म योग का मार्ग, जिसमें व्यक्ति सब कुछ कर रहा है लेकिन है सन्यासी। आपने सुनी होगी राजा जनक की एक कहानी कि एक सन्यासी ने सुना कि राजा जनक बहुत बड़ा योगी है। उसे विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा भला राजा जनक जो महलों में रहता है, जिसके पास रानियां हैं, नाच गाने होते रहते हैं, वो योगी कैसे होगा? हम सन्यासी जंगल में रहते हैं तो भी योगी नहीं बने। तो वो गया देखने के लिए, महल में पहुंच गया, उसका स्वागत किया, उसने देखा, जो सुना था वही देखा कि वहां तो नाच गाने हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे भोजन बन रहे हैं। उसको लगा ये योगी कैसे हो सकता है भला, ये योगी नहीं है, और वो ऐसा कुछ बोल के चलने लगा। राजा जनक ने उसको रुकवाया, कहा कि अभी और ठहर जाओ, और दूसरे दिन एक प्लान बनाकर उसको पास की नदी में नहलाने के लिए ले गया। और जब वो दोनों नहा रहे थे, सन्यासी भी अपनी गठरी महल में ही छोड़ गया था, दोनों नहा रहे थे तो देखा महल में आग लग गई। लोग भागे भागे राजा के पास आए कि राजन महल में आग लग गई है। राजन ने कहा कोई बात नहीं, बुझा दो। और सन्यासी भागा, क्यों भाग रहे हो, मेरी गठरी न जल जाए। तो राजा कह रहा है कोई बात नहीं, बुझ जाएगी, बुझा दो। और सन्यासी कुछ नहीं सुन रहा, भागा जा रहा है। एक गठरी में ममत्व है उसका, इसलिए वो योगी नहीं बना, भले सन्यासी बन गया हो। और जनक महलों में रहता है, राज का मालिक है, लेकिन उसमें मेरापन नहीं है, अनासक्त भाव है, इसलिए वो योगी है। उसकी समझ में आ गया कि केवल घर छोड़ने से कोई योगी नहीं बन जाता है। तो गीता इस पर ही सारी लिखी है कि ऐसा कर्म योग का अनासक्त मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें मनुष्य अपने जिम्मेदारियों को भी निभाता हो और योगी बनकर भी रहता हो। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा है कि अगर तुम्हारे पास बहुत धन संपत्ति है, महल है, मान लो कल कोई राजा ज्ञान में आ जाता है, उसके पास अथाह धन संपत्ति है, तो उसको ये तो नहीं कहा जाएगा ना सब कुछ छोड़ दो, तुम महल छोड़ के एक छोटा सा मकान बना लो, उसमें रहने लगो, जहां तुम हो जैसे हो वैसे ही रहो, जो तुम खा रहे हो वही खाते रहो, लेकिन योगी बनकर वस्तुओं का प्रयोग करो, वस्तुओं को अपनी संतुष्टि का आधार न समझो, वस्तुओं में इतने आसक्त न हो जाओ कि वस्तुओं को अपनी खुशी का माध्यम बना लो। वस्तुएं, पदार्थ, धन संपत्ति तुम्हें ईश्वरीय सुख नहीं देंगी। अगर ईश्वरीय सुख तुम्हें चाहिए तो इन सब का प्रयोग अनासक्त होकर करो, बाबा की देन समझकर करो। तो इस सूक्ष्म विषय पर अपने जीवन में हमेशा चिंतन होता रहे कि हम कर्म और अपनी जिम्मेदारियों को अनासक्त होकर कर रहे हैं। जब सब कुछ हमने बाबा का कह दिया, मान लिया, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम कर्म करते हुए ये भावना बना लें अपने मन में कि ये कर्म बाबा के प्रति हो रहा है, ये कर्म यज्ञ प्रति हो रहा है, बस यही सबसे श्रेष्ठ चीज है। जिन्होंने गीता पढ़ी हो वो जानते हैं कि गीता में एक जगह ये कहा गया कि हे अर्जुन, जो लोग ऐसा कहते हैं कि मैं दान करूंगा, मैं पुण्य करूंगा, मैं इतने लोगों को भोजन खिलाऊंगा, मैं इतने यज्ञ आयोजित करूंगा, उनका ये कर्म भी रजो प्रधान कर्म है, सतो प्रधान नहीं। क्यों? क्योंकि मैं करूंगा ये भावना बनी हुई है। यज्ञ प्रति कर्म करना, और इससे भी गहरी बात यह है जिस पर हम सबको पहुंचना है कि कर्म करने के बाद कर्म के परिणाम को बाबा पर अर्पित करते चलें। कर्म प्रारंभ करते ये फीलिंग बनी हो कि ये बाबा के प्रति है, और कर्म समाप्ति पर जो भी उसका परिणाम हो, सफलता या असफलता, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप या विरुद्ध, उस सब को समर्पित कर दें, तो ये हमारी कर्मातीत स्थिति की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ होगा कि हम कर्म से और कर्म के परिणाम से स्वयं को अप्रभावित कर दें। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि निरंतर मनुष्य कर्म कर रहा है और निरंतर कर्म से प्रभावित हो रहा है। देखने का कर्म, सुनने का कर्म, भोजन खाने का कर्म, बोलने का कर्म, हाथों से किया गया कर्म, सब निरंतर हो रहे हैं और निरंतर मनुष उनसे प्रभावित हो रहा है। प्रभावित न हो, अनासक्त होकर कर्म करते रहें। इसकी पहली विधि कौन सी बताई बाबा ने? सबसे सहज पहला अभ्यास कि मैं आत्मा अंदर बैठकर इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं। जरा बैठकर ये सोचो कि मैं आत्मा हाथों से कर्म करा रही हूं, आंखों से ये चीजें देख रही हूं, तो कहीं मैं आंखों के वश तो नहीं हो गई? आंखों को आदत पड़ी हुई है कुछ देखने की और मैं कह रही हूं कि नहीं देखो, तो कहीं आंख बार बार खींच तो नहीं रही? ये थोड़ा सा अभ्यास, मान लो बाजार में एक बहुत अच्छी चीज बिक रही है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारे काम की नहीं है, वो मिठाई बिक रही है बहुत अच्छी और आंखें बार बार जा रही हैं क्योंकि पहले खाया करते थे और अब मन कह रहा है कि नहीं जाओ उधर, अब तुम्हारा कुछ लेना देना उससे नहीं है, तो हम जरा देख लें कि आंखें हमारी बात मानती हैं या हमसे अपनी बात मनवाती हैं। तो कर्म का प्रभाव और कर्म के परिणाम का प्रभाव, इससे मुक्त होने के लिए समर्पित भाव और मैं आत्मा अंदर बैठकर कर्म करा रही हूं, मैं करावनहार हूं, इस फीलिंग को बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए मेरापन निकलता चले, क्योंकि मेरापन ही मनुष्य को क्या करता है? भारी करता है। बहुत खुशी में होंगे आप सवेरे और जैसे ही मेरापन आया तो मन भारी होने लगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पता नहीं खुशी कहां चली गई, लेकिन खुशी गुम हुई मेरेपन से। इसलिए पकड़ हो जाए हम सबको कहां पर मेरापन काम कर रहा है। हर क्षण काम करता है मेरापन। पहले तो संबंधों में मेरापन, क्या है मेरापन? पहले जिसको हमें हटाना है, संबंधों में मेरापन क्या, किस शब्दों में हम प्रयोग करते हैं? संबंधों में मेरी स्त्री, मेरा पति, मेरे बच्चे, और जहां ये मेरापन है वहां दूसरी बड़ी बीमारी कौन सी? नहीं, दूसरी अधिकार की भावना। ममत्व तो है ही, अधिकार कि जब ये मेरे हैं तो जैसा मैं कहूं वैसा इन्हें करना चाहिए, और ऐसा इस संसार में कोई नहीं करता जैसा हम चाहें। मनुष्य की एक्सपेक्टेशंस, उसकी कामनाएं अधिकारों से प्रेरित हैं। हम एक दूसरे पर अधिकार की भावना रखते हैं, ये मेरे हैं, और हम खुद सोचें कि क्या हम दूसरों की कामनाओं को पूरा कर पाते हैं? क्या कोई भी मनुष्य संसार में ऐसा है जो सबकी कामनाओं को पूरा करता हो? कोई नहीं मिलेगा, भगवान भी नहीं कर पाता है। देखा होगा ना आपने, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मनुष्य की बहुत ज्यादा होती है। हर व्यक्ति चाहता है बाबा आया है तो मुझे बहुत दृष्टि दे, मुझे भी टोली दे दे बुलाकर, मैं भी बाबा से अच्छी तरह बात कर लूं, तो कहां तक बाबा सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा? तो ऐसे ही संसार में हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करना पड़ेगा। ये अधिकार की भावना ट्रस्टीशिप नहीं है, निमित्त भाव नहीं है। और जैसे जैसे हम कामनाओं को कम करेंगे वैसे वैसे हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस 100% हैं तो खुशी 0%, और अगर एक्सपेक्टेशंस को तुम 0 पर ले आओ तो खुशी 100% हो जाएगी। तो अपने परिवारों में रहते हुए इस अधिकार की भावना को जरा हल्का करें। अब बच्चे वैसा ही करें जैसा मैं कहता हूं, क्योंकि मैं समझदार हूं, मैं घर का बड़ा हूं, मैं उनका माँ बाप हूं, मैंने उनको क्रिएट किया है, मेरी नहीं मानेंगे तो वो किसकी मानेंगे? और ये बात कई माँ बाप को बड़ी परेशान करती है। और बच्चे कहते हैं हमने इंजीनियरिंग की है, हमने मेडिकल किया है, मैंने एमए किया है, ये हमारे माँ बाप बिना पढ़े लिखे, इन्हें क्या पता, ये ओल्ड कल्चर में पढ़े हुए पले हुए लोग, हमारी तो आधुनिक कल्चर है, हम तो उसको फॉलो करेंगे, हमारे फ्रेंड्स तो ये चाहते हैं। तो इसमें जरा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। केवल हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चे पूरा करें ये संभव नहीं है, वो भी स्वतंत्र हैं, उनको भी अपना विवेक है, वो भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं, हम अपनी कामनाओं को उन पर लाद न दें, नहीं तो ये बात रिवर्स होकर हमारे लिए ही समस्या बन जाती है। उनकी पालना भी करें, उनको गाइड भी करें, जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी कर सके उनके लिए वो करें, लेकिन ये कभी संभव नहीं है कि वो सब कुछ वही करेंगे जो आप चाहते हैं। माँ तो चाहती है मेरा बच्चा मेरे पास ही रहे रात दिन, पढ़ने भी न जाए। ऐसे बहुत सारी माताएं हमने देखी जो बच्चों को स्कूल भी जाने में बड़ा भारी महसूस करती है कि 8 घंटे के लिए बिछुड़ गया, पता नहीं ठीक ठाक वापिस पहुंचेगा या नहीं। तो ऐसा अपनी कामनाओं को जरा हल्का करते चले और आगे बढ़े, थोड़ा अपने इन संबंधों में मधुरता अवश्य लानी है। और मधुरता में एक बात का जरा विशेष ध्यान रहे कि भाई जब काम धंधों से ऑफिस से घर में आते हैं तो ऑफिस के सारे बोझ और टेंशन को मैं लॉकअप करके आए घर ले आते हैं। लड़ाई की होगी किसी ने, गुस्सा उतरेगा घर में, माताएं खुश हो गई ये बात सुन के। तो ऐसा ना करें आप, अपनी जितनी भी टेंशन है जो भी सारा दिन हो गई है, रास्ते में आते हुए घर तक आते हुए उनको न्यूट्रलाइज कर दें, ज्ञान के बल से घर तक उनको न लाएं, वो ऑफिस की चीजें ऑफिस में रहें। अगर कभी हो भी जाए, पहली बात तो ये है कि टेंशन होना ही नहीं चाहिए, भारीपन साथ में लाना नहीं चाहिए, परंतु कहीं हो जाए, दुनिया ऐसी है, किसी से कोई टकराव हो जाए, तो जब आप घर में आ रहे हैं इस फीलिंग से आए कि मंदिर में जा रहे हैं, बाबा के आश्रम में जा रहे हैं, वहां गलत वाइब्रेशंस नहीं ले जाने हैं जिनको हमें ही फिर ठीक करना पड़े, जिसको बाबा कहते हैं पहले क्रिएट कर देते हैं बच्चे, फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मेहनत करते हैं। अब माताओं का क्या कर्तव्य है? माताओं का कर्तव्य है कि जब भाई लोग काम धंधे से जरा भी भारी होकर घर आए तो उनको हल्का कर दें। ऐसी वैसी बातें ना सुनाएं कि पड़ोसी ने ऐसे कर दिया, उसने मुझसे ऐसा व्यवहार कर दिया, वो ऐसा कह रही थी आज, ये नहीं। आप मंदिर में हैं और मंदिर की मूर्ति को मूर्ति बनकर ही रहना है। ऐसे वाइब्रेशंस आप अपने घर में बनाएं कि भाई जब बाहर से थके हारे आए तो वहां आते ही चित्त की सारी थकान उठ जाए, मिट जाए। ये है आपका कर्तव्य। दूसरा आपका कर्तव्य है बहुत अच्छा योग युक्त भोजन खिलाना। बहुत अच्छी तपस्या माताओं के लिए है कि दिन में अगर आपको 4 घंटे भोजन में लगते हैं पूरे परिवार का बनाने में, तो आप बहुत शांति और आराम से भोजन बनाएं, बाबा का गीत बजाएं और ऐसा अपने मन में निश्चित कर दें कि ये 4 घंटे तपस्या के हैं। बैठना शायद आपको 4 घंटे न मिले या बैठकर 4 घंटे में आनंद न भी आए, लेकिन कर्म योग का आनंद सबसे श्रेष्ठ आनंद है, इसको अवश्य अनुभव करना है। तो आपस में दोनों में विचारों का मिलन हो, विचारों की टकराहट न हो। एक के विचार अगर तेज हैं तो उसको चाहिए अपने विचारों को थोड़ा नीचे लाएं। आपस में मिलन करना ये अपने गृहस्थ में शांति स्थापना का एक तरीका है, लेकिन ऐसे निश्चय में रहना जिसको निश्चय नहीं लेकिन जिद कहते हैं कि नहीं जो मैं कहूं वही होना चाहिए, इस जिद को अपने गृहस्थ से समाप्त कर देना चाहिए। तो इस तरह अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को महान आत्मा समझकर चलेंगे और जो कुछ हो जाता है, जो कुछ हो रहा है, क्योंकि हम समय की समाप्ति पर हैं, इसलिए अनेक ऐसी बातें जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस होंगी, जो हमने कभी सोची नहीं होंगी, आगे चलकर हमारे सामने अवश्य आएंगी, जिसको बाबा ने कहा है कि अंतिम समय तक हर बच्चे को पूरी तरह से निराधार होना पड़ेगा। जो भी आधार किसी ने बनाया हुआ है, अपनी खुशी का आधार, अपनी अच्छी स्थिति का आधार, अपनी किसी भी तरह की पालना का अगर कुछ भी आधार निश्चित किया है, वो अवश्य निकल जाएगा, क्योंकि अंत में सभी को ये देखने को मिलेगा कि मैं कहां हूं। हर व्यक्ति स्वयं को स्वयं सर्टिफिकेट देगा, हर आत्मा स्वयं महसूस करेगी मैं यहां हूं। कोई ये नहीं सोच सकेगा कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, या जो बड़ी स्थिति में पहुंचे हैं वो ये नहीं सोच सकेंगे कि मैं छोटा हूं। जो जो है, जो रियलिटी है, वो हरेक के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। इसलिए भविष्य को ख्याल में रखते हुए, जबकि हम एक ऐसे समय की ओर बढ़ रहे हैं, एक और ये समय प्रत्यक्षता का होगा, प्रत्यक्षता जो चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ दृश्य है इस सृष्टि पर, सबसे सुंदर अनुभव, जिसमें सभी आत्माएं बाबा के बच्चे निरंतर अतींद्रिय सुखों में रमण करेंगे, और दूसरी ओर वही समय चैलेंज से भरा हुआ भी होगा, जो हम सबके लिए अनेक तरह के टेस्ट लेकर, अनेक तरह के पेपर्स लेकर भी आएगा। उसके चैलेंज को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, हम कहीं नहीं जा सकेंगे भागकर। उसके लिए अभी से हमें अपने में सामर्थ्य इकट्ठी करनी पड़ेगी, अपने को निर्भय भी बनाना पड़ेगा और साक्षी भी। तो मैं यही कहूंगा अंत में कि अपने गृहस्थ में रहते हुए आप ऐसे योगी बन जाएं कि सन्यासियों के शीश झुक जाएं, संसार आपको फॉलो करे, और इतना ही नहीं, बाबा को भी आप सब पर गर्व हो, बाबा सन्यासियों के सामने दिखा सके कि आप हो सन्यासी और ये हैं बाबा के घर में रहते हुए सच्चे सन्यासी। देख लो कौन महान है, किसकी फिलोसोफी सत्य है। वो तर्कों से अपनी फिलोसोफी को सत्सिद्ध करें और हम जीवन से बाबा की फिलोसोफी को सत्सिद्ध करें। उनकी बुद्धि में गीता के श्लोक याद किए हों और हमारा जीवन गीता बन जाए। हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हम उन्हें कह दें कि जो श्लोक आपको ढूंढना हो हमारे जीवन में ढूंढ लो। ऐसा जीवन जिसके लिए किसी बात की संघर्ष की आवश्यकता नहीं, जो बहुत सरल जीवन है, बाबा ने हम सबको सिखाया है। तो बाबा को साथ लेते हुए अपने गृहस्थ की इस गाड़ी को इतने आराम से चलाओ कि गृहस्थ बोझ अनुभव न हो। गृहस्थ की गाड़ी खींचते खींचते आप थक न जाएं, मन थक न जाए कि बहुत हो गया, परिस्थितियों ने हमें तो थका दिए, अब और नहीं सहा जाता। ये आवाज हमारे मन से न निकले, बाबा को साथ लेकर चलें, उसकी छत्र छाया के नीचे सदा चलें, तो ये गृहस्थ गृहस्थ नहीं, बाबा का मंदिर बन जाएगा। ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा से ऐसा ही वरदान लेते हुए कि हम सदा ही आपकी छत्र छाया के नीचे अपने इस गृहस्थ जीवन को आदर्श बनाएंगे।